الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم نے 188 آیت تک کر لیا تھا, آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے. فرمایا کہ یسألونک عن الأحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, یہ تم سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں. میں نے جیسے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ دو سوالات خود اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا جو ذہنوں میں تھے لیکن سوال پوچھے نہیں گئے تھے. اعلان کیا گیا کہ جو سوال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. اور اب ایک سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ سامنے آ رہا ہے. سوال جو ہے وہ چاند سے متعلق پوچھا گیا ہے. چاند کے لیے جو لفظ بولا گیا ہے وہ اہلہ ہے جو جمع ہے, تو اس لیے میں نے ترجمہ چاندوں کیا ہے. کئی زبانوں میں چاند بول کر مہینہ مراد ہوتا ہے. ہم بھی کون سا ماہ ہے, ماہ چاند کو کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے مہینہ. تو ماہ جو ہے وہ عربی میں بھی اور اردو میں بھی فارسی میں بھی چاند کے مہینے کے معنی بولا جاتا ہے, اور انگریزی میں بھی بعض صورتوں میں یہ مہینے کے معنی بولا جاتا ہے. تو یہ کچھ مہینوں کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں جو چاند پر, یعنی قمری مہینوں کا کہہ لیجئے کہ قمری مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ سوال جو پیدا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے رمضان کا بھی ذکر ہوا اور کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں, وہ بھی قمری مہینوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور پھر یہ چیز زیر بحث آ گئی کہ جو آگے چل کر حج کا بھی ذکر آ رہا ہے, تو اس پہلو سے یہ بہت اہمیت رکھتا تھا کہ قمری مہینوں کے بارے میں بھی سوال کر لیا جائے. اور قمری مہینوں کا میں خاص طور سے جو چاند کا عروج و زوال ہے وہ بھی پیش نظر ہے, اور اسی طرح یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ جو شریعت کے احکام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے. اور اس کے پیچھے جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ قریش کے قبضے میں ہے, اور ہم اگر حج کرنے جائیں تو کیا معاملہ ہوگا, کیا اس میں کوئی جنگ پیش آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے, یا اسی طرح اگر وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے حج کرنے کی یا عمرہ کرنے کی تو پھر کیا کرنا ہے. یہ سوالات ہیں جو سامنے رکھ کر یہ بات اٹھائی جا رہی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ آگے واضح ہوگا کہ سوال کیا کیا تھے. کوئی ایک سوال نہیں ہے, چاند کے مہینوں سے متعلق چار پانچ سوالات ہیں جو آگے زیر بحث آ جائیں گے. ان کو ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور جواب دیا. پہلا آغاز میں جو فرمایا کل, ان کو جواب دیجئے کہ ہیا مواقیت للناس, کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. مواقیت جو ہے وہ میقات کی جمع ہے. میقات کے معنی ہوتے ہیں کوئی ایسا ٹائم مقرر کر لینا جس پر کوئی کام ہم سوچیں گے کریں گے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ شیڈیول بنا لینا. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس شیڈیول میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان ٹائمنگ کو مواقیت کہیں گے. جو اس میں ہم نے کہا جی 10 بجے ہم نے چائے پینی ہے اور 10:30 بجے ہم نکل جائیں گے, تو یہ مواقیت ہوں گے. تو لوگوں کے لیے مواقیت ہے, یعنی وہ اپنے کاموں کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے. مثلا ہم رمضان کی پلاننگ کر سکتے ہیں, ہم حج کی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ کس دن مہینے میں کب ہوگا. اسی طرح بعض صورتوں میں خواتین کو عدت کاؤنٹ کرنی پڑتی ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری جو ٹائم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان سب کے لیے یہ مواقیت بن جاتا ہے. تو گویا لوگوں کے شرعی معاملات میں اور دنیوی معاملات میں اسکیجول کرنے کے, ٹائم کو طے کرنے کے یا اس پہلو سے متعین کرنے کاؤنٹ کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک پہلی بات یہ ہے, دنیوی معاملات بھی اور دینی معاملات بھی دونوں میں ایک ہی چیز ہے. والحج, اور حج کے لیے بھی یہ مواقیت ہے کہ ان مہینوں کو ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ حج کے دن متعین کیے جا سکیں اور خاص دنوں میں حج کیا جا سکے. مواقع جیسے میں نے بتایا کہ ٹائم مقررہ ٹائم ہوتا ہے, तो हज के लिए मवाकीत बनाना लाजम था, उमरे के लिए मवाकीत मुकर्रर नहीं किए गए। आप सारे साल में जब चाहें उमरा कर सकते हैं, लेकिन हज के लिए टाइम मुकर्रर किया गया क्योंकि पेश नज़र ये था गालबन कि तमाम दुनिया के लोगों को इकट्ठा करना है। तो अब उस पहलू से भी प्लानिंग होगी, लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं कि भाई हज पे जाना है, वो पूरा पूरा टाइम उसमें निकाल रहे होते हैं, दरख्वास्तें आजकल हमारे यहाँ जमा हो रही होती हैं, सफ़र की तैयारियाँ हो रही होती हैं, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। अब जब हज का जिक्र हुआ तो हज के पहलू से कुछ चीज़ें ज़रा बहस आ गई और उनको पहले ले लिया है। अरबों ने एक बिदत ईजाद कर रखी थी गैर कुरैशियों के लिए, कुरैशी ऐसा नहीं करते थे लेकिन गैर कुरैशियों के लिए ये बिदत, अरबों के जो कुरैश हैं ये खाना काबा के समझ लीजिए कि मुजावर हैं, मुतवल्ली हैं, निगरान हैं, कस्टोडियन हैं, तो ये क्या करते थे कि अपने लिए कुछ नरमियां कर ली हुई थी इन्होंने कवानीन के अंदर, और मसलन आगे नहीं जाना अरफात से हज के दिनों में, और मिना तक नहीं जाते थे। इसी तरह जो कपड़ों के बारे में अपने बारे में नरमी थी, लेकिन दूसरों के लिए था कि कतान का कपड़ा पहनेंगे तो फिर कर सकते हैं, वरना बग़ैर लिबास के आप तवाफ़ करें, इस तरह की सख्तियाँ। इसी तरह की ये सख्ती भी इन्होंने की हुई थी कि जो गैर कुरैशी हैं वो हज के दिनों में अगर उन्होंने हज की नियत कर ली है या एहराम बांध दिया है तो वो अपने घरों में जो उनका असल दरवाज़ा है उससे नहीं आएंगे, बल्कि अगर खैमा है तो उसके पीछे से कोई रास्ता बनाएंगे, और अगर घर है पक्की ईंटों का या कच्ची ईंटों का बना हुआ तो उसमें रास्ता बनाकर उसमें से आएंगे। ये गोया इबादत के अंदर जैसे हम गुलूफ कर लेते हैं बाद चीज़ों में कि शरीयत में नरमी होती है लेकिन हम कोई सख्त ऐसी चीज़ बना लेते हैं कि भाई इस तरह से होना चाहिए, ऐसा ही गालबन कुछ तकवे की अलामत के तौर पर उन्होंने इसको सख्त कर लिया हुआ था। ज़्यादातर मुफस्सरीन ने इस मानी में लिया है कि ये अहराम की हालत में हाजी ऐसा करते थे, और ये भी फ़र्क नहीं बताया कि कुरैशी करते थे या दूसरे लोग करते थे, लेकिन मेरी तहकीकात के मुताबिक कुरैश ऐसा नहीं करते थे, और बाकी जो मसलन अंसारे जो मदीना के लोग हैं वो जब आएंगे तो ऐसा करेंगे, या दूसरी कौमें जो थी जो गैर कुरैशी हैं वो ऐसा करती थी। और दूसरा ये कि अहराम की हालत में, जहाँ ये बात आई है वहाँ अहराम से ज़्यादा लगता है कि हराम महीनों में वो ऐसा करते थे जिस मौके पर ये बात आ गई है। तो लेकिन बहरहाल मेरे पास तारीखी तौर पर कोई सबूत नहीं है, लेकिन सियाको सबाक बता रहा है कि हराम महीनों के अंदर यानी हज के जो तीन महीने थे उनके अंदर ये पाबंदी वो करते थे कि आदमी ने हज का अज़म कर लिया, अभी अहराम नहीं बांधा, लेकिन अब वो उसने पाबंदियाँ शुरू कर दी हैं, जैसे हम कुर्बानी करनी होती है तो नाखून वगैरह तराशने में रुक जाते हैं, इस तरह की कोई चीज़ उनके यहाँ जारी हो गई हुई थी जो बिल्कुल बिदत थी, अल्लाह ताला ने उसको ख़त्म कर दिया यहाँ पर। तो फरमाया कि ये चांद के महीनों के बारे में पूछते हैं तो इनसे कह दो कि ये लोगों के लिए अपने कामों के लिए वक्त तय करने के तरीके हैं का ज़रिया है, और हज का वक्त तय करने का भी ज़रिया है। और फरमाया कि ये नेकी नहीं है कि तुम घरों के पीछे से आओ, बल्कि नेकी यह है कि तुम नेकी उसकी नेकी है जो तकवा इख्तियार करता है, और तुम अपने घरों के दरवाज़ों ही से आया करो, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। ये अब अल्लाह ताला ने उस बिदत की इस्लाह कर दी कि ये कोई नेकी नहीं है कि तुम हज के दिनों में इस तरह से मामला करो। अब ये जुमला बज़ाहिर उखड़ा हुआ लगता है कि ये क्या बात हो रही है जिसमें ये बात आ गई है, असल में ये तकवे के साथ जुड़ा हुआ है। ये जब टाइम है जब ये सूरह उतर रही है तो उस टाइम पे मुसलमानों के ऊपर मक्का में बहुत जुल्म ढाए जा रहे थे, खुद जो हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाए सहाबा वो भी इसी वजह से आए थे कि उनके साथ परसिक्यूशन का अमल हो रहा था। तो इसको कुरान में फितना कहता है, फितने का अमल जारी था, यानी मज़हब की वजह से सताया जाना कि वो वापस अपने आबा व अजदाद के मज़हब पर आ जाए, ये काम बड़ी शिद्दत से जारी था। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये इस तरह की शरीयत के फतवे तो बड़े देते हैं कि दरवाज़े से नहीं आना और घर के दीवार तोड़ कर आएँ या खैमे के पीछे से आएँ, इस तरह के फतवे तो बड़े देते हैं और नेक बनते हैं, लेकिन नेकी ये नहीं है कि एक तरफ तो तुम ईमान की वजह से लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम छोटी छोटी बातों में नेकी के अफसाने बताते हो, तो नेकी ये नहीं है कि तुम पीछे आप सीधे दरवाजे से आया करो बस, लेकिन नेकी उसकी है जो मन इत्तका, जो तकवा इख्तियार करता है। तो यहाँ असल में प्रोसिक्यूशन के पस मंज़र में ये बात आ रही है, तो जो तकवा इख्तियार करेगा वो उसकी नेकी नेकी होगी। अब इसको दोनों पहलुओं से देख लें कि नेकी ज़ाहिरी रसूमात का नाम नहीं है, जैसे हमने भी हमारी उम्मत में भी ये बात आ चुकी है कि हम जो ज़ाहिरी रसूमात हैं उनको नेकी समझते हैं। ज़ाहिरी रसूमात नेकी नहीं होती, कि मसलन हमने नमाज़ पढ़नी है तो हमारे यहाँ देखिए कि नमाज पे सबसे ज़्यादा ज़ोर क्या होता है कि तुमने हाथ कैसे बांधने हैं, आमीन कैसे कहनी है, रफ़ा दैन करना है कि नहीं करना, पांचे तुम्हारे शलवार कहाँ पे टखने, पांचे कहाँ होंगे और दोनों पाँव के दरमियान फासला कितना है, हाथों की उंगलियाँ कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सख्ती की जाती है। लेकिन इस बारे में कोई सख्ती नहीं होती कि खुशू के साथ नमाज़ पढ़नी है, तकवे के साथ नमाज़ पढ़नी है, खुदा को जवाबदेही के लिए नमाज़ पढ़नी है, शुक्र के लिए, इस पर कोई बात नहीं होती। ऐसा ही इनके यहाँ भी हो चुका हुआ था कि नेकी अगर इख्तियार करनी है, हाजी मुझे इतकाफ़ करने वाले याद आ जाते हैं कि अगर आप ख़ास तौर से जो बरेलवियों की मसाजिद हैं तो उसमें अगर आप इतकाफ़ करने वालों को जाकर देखें तो उन्होंने मुंह छुपाया होता है, यानी वो बिल्कुल ढांपा होता है ताकि कोई पहचान ना सके। तो अब ये क्या है कि एक अल्लाह ने कहा था कि मस्जिद में जाकर बैठ जाओ, लेकिन अब हमने उसमें गुलूब कर लिया, थोड़ा सा उसमें इजाफा कर लिया, ताकि अब नेकी का मियार यह है कि आपका घूंघट निकला हुआ है और मस्जिद में आप बैठे हुए तो अब इस तरह की चीज़ें जो होती है वो फिर आप बताता है आदमी अपने रवैये से कि हम कुछ ज़ाहरी चीज़ों में फंस गए हुए हैं। तकवा, वो बैठे हुए कवालियाँ सुन रहे होंगे लेकिन जैसे ही नमाज का टाइम होगा तो रुमाल सा लपेट कर बाहर आ जाएंगे। मैं एक आधे इतकाफ़ में, मेरा तजुर्बा है कि मैं नाम नहीं ले रहा, उनकी मस्जिद में बैठा था, बड़े मशहूर आलम दीन हैं, तो सारा दिन उनके केसट चलते थे तकरीरों के, और तरावी पढ़ते हुए यानी लोग भाग आते थे, चार पढ़ के पाँच पढ़ के, और आके फिर वही बातें वही सब कुछ। लेकिन इस तरह की ज़ाहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा नुमायाँ थी कि आपने रुमाल बांधा हुआ है, छुप के रखा हुआ है अपने आप को, किसी के सामने नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें हो रही होती थी। तो तकवा जब होता है तो तकवा इन ज़ाहरी चीज़ों में नहीं फंसता, बल्कि वो हकीकी तौर पर जो चीज़ें जारी होती हैं उनके ऊपर रहता है। एक तो पहलू मैंने बयान कर दिया कि ये तकवा दरअसल कुरैश मक्का की इन सारी खराबियों को पेश नज़र रखते हुए जो मुसलमानों के साथ कर रहे थे उसके तरफ जोड़ा है। दूसरी बात जो वाज़े हो रही है वो ये कि तकवा ये नहीं है कि हम अपनी मनपसंद शरीयत बनाएं, तकवा ये नहीं है। तकवा ये है कि जो शरीयत अल्लाह ने रखी है उसको अपनाएं, ये भी इससे वाज़े हो रहा है कि हमने, यानी एक आदमी हो सकता है जाहिली दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाक़ईतन लोग यही समझते हों कि दरवाज़े के पीछे से जाना ही, घर के पीछे से जाना ही घर में दाखिल होना, वो या दीवार फलांगते थे या कोई दीवार तोड़कर रास्ता बनाते थे, खैमा होता तो आसानी होती थी कि वो पीछे से कपड़ा चीरा अपने और चले गए अंदर, लेकिन ये सब कुछ करते थे और इसको नेकी समझते थे अपने लिहाज से। तो अल्लाह ताला ने बताया कि नहीं, नेकी वो होती है जो मेरी शरीयत के मुताबिक हो, तो तुम दरवाज़ों के सही आओ घरों में लेकिन तकवा इख्तियार करो। तो नेकी का, तकवे का मियार गोया, तकवा आप दो किस्म का कर लीजिए, एक तकवा ये है कि मैंने खुदा खौफी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, नेकी पर रहना है, नेकी को नहीं छोड़ना, बुराई से बचना है, एक तकवा ये है। दूसरा तकवा यह है कि मैंने ठीक असल दीन को अपनाना है, ये भी तकवा है। तो हमारे मुल्क में इस तकवे की सबसे ज़्यादा कमी है कि हम बिदात के रसिया हैं और ऐसी चीज़ों के जिसका कोई सबूत नहीं है कुरान और सुन्नत में उसको हम अपनाते हैं। तो करने का काम दरअसल ये था कि हम असल शरीयत असल दीन को अपनाएं, ये भी तकवा है। तो अब तकवे के तीन पहलू हैं जो यहाँ पर शेड इकट्ठे हैं। एक ये कि कुरैश मक्का मुसलमानों पे जुल्म ढा रहे थे और तकवे की ये बातें करते थे कि जी यहाँ हज में ऐसे करना है ऐसे करना है। दूसरे तकवे का पहलू यह है कि यहाँ पर जो बिदत के हवाले से बात आई है कि शरीयत को इख्तियार करना तकवा है और शरीयत को इख्तियार, गलत शरीयत को अपना लेना, ये तकवे के ख़िलाफ़। और तीसरा तकवा यह है कि खुदा खौफी अंदर, आदमी के अंदर खुदा तरसी हो, वो अल्लाह की खातिर चीज़ें करने वाला हो। तो अब एक आदमी मुत्तकी नहीं हो सकता कि एक तरफ तो वो जुल्म ढा रहा है लोगों पर और नमाज पढ़ रहा है, ये मुत्तकी नहीं हो सकता, ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों के साथ ये जुमला बोला है कि एक ही दिल में गाली देना और ईमान इकट्ठा नहीं हो सकता, एक ही दिल में ईमान और झूठ इकट्ठा नहीं हो सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी मुत्तकी हो और वो जुल्म ढा रहा हो, वो कत्ल कर रहा हो, वो अजियत दे रहा हो, ये मुमकिन कैसे है? तो ये तकवे का जो यहाँ मजमर है बात, वो यहाँ पर ये पेश नज़र है कि उधर मक्का पे कब्ज़ा है, खाना काबा पे कुरैश का, और मुसलमानों को हज करने की इजाज़त नहीं है, और उधर जो मक्का में मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और मदीना में जो मुसलमान हैं उनको हज की इजाज़त नहीं है। तो ये तकवा कैसा तकवा है? एक तरफ इतनी पाबंदी है कि घर के दरवाजे से अंदर नहीं आना। अब उसकी वजह क्या है कि क्यों घर के अंदर नहीं आते थे? मैंने जैसे मेरे ख्याल में यह गुलूब है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि वो समझते थे कि गुनाह के साथ, जिन दरवाज़ों से गुनाह के साथ अंदर आते जाते थे, अब उधर से ना आए जाएं। लेकिन बहरहाल ये क्यास है, दोनों के दोनों क्यासात हैं, इससे ज़्यादा कोई बात हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो बिदत ख़त्म कर दी कि अब दरवाज़ों से आओ अपने घरों के, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। असल चीज़ ये है, तकवे की हकीकत यही है कि अल्लाह से डरते रहें। असल में अल्लाह से डरते रहें का मतलब है कि अल्लाह की परवाह करके ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह के लिहाज से ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह की खातिर ज़िंदगी गुजारें। तकवे के मानी ये हैं। इत्तकुल्लाह का मतलब यही है कि अल्लाह से बचें, अल्लाह के बारे में बेपरवाह होकर ना रहें, ये इसके मानी होते हैं। अब अगर हम अल्लाह के बारे में बेपरवाह हो जाएं, तो इसका मतलब है कि हमने झूठ सच में कोई तमीज़ नहीं, नेकी बदी में कोई तमीज़ नहीं, शरीयत और बिदत में कोई तमीज़ नहीं, बस जो दिल चाहता है करते रहते हैं। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। फलाह हमारे इन इस तरह की आयतों को बड़ा लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, मसलन वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये इस मानी में भी इस्तेमाल कर ली जाती है आयत के, तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुम्हारे जो दुनियावी प्रोग्राम है उनमें कामयाबी देगा, तुम्हारे मिशन कामयाब हो जाएंगे, तुम्हारे कारोबार चल पड़ेंगे, तुम्हारी जो प्लानिंग कर रखी है तुमने तरक्की करने की, वो कामयाब हो जाएगी। ये इस तरह से नहीं है। यह आयत आखरत के पहलू से है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम क़यामत वाले दिन कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला ने नेकियों के साथ किसी दुनियावी कामयाबी को मशरूत नहीं किया। कहीं ऐसा नहीं है पूरे कुरान मजीद में कि नेकी करोगे तो तुम्हें रिस्क मिलेगा, नेकी करोगे तो तुम्हें दुनियावी कामयाबी मिलेगी, नेकी करोगे तो मैं अमीर कर दूंगा, नेकी करोगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, कहीं नहीं है। जिन आयतों से गलत फहमी पैदा होती है वो आयतें वो हैं जो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादे हैं कि तुम्हें मैं खिलाफत अता करूंगा, इस ज़मीन में इक्तदार मिलेगा, और इनको जहां पाओगे मार डालोगे, तुम्हें फतह हासिल होगी, तुम्हें नुसरत होगी। वो अल्लाह के रसूल का पहलू से एक बात है जो कुरान मजीद में जा बजा आई है, उसका मेरे और आपके तकवे और नेकी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये ख्याल अपने दिलों से निकाल देना चाहिए कि रिस्क खोलने के लिए नमाज़ें काम आएंगी। अगर आपने नमाज़ें इसलिए पढ़ी हैं तो फिर वो इसी के लिए रह जाएंगी, आखरत में काम नहीं आएंगी। उसमें फिर अल्लाह के रसूल की तरफ से और कुरान मजीद में भी, जब हम सूरह बनी इसराइल में पहुँचेंगे, कि अगर किसी ने नेकियाँ इस वजह से कहीं कि दुनिया में कामयाबी मिले, तो फिर अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से दो जो देना चाहेंगे उसको दे देंगे, जितना देना चाहेंगे दे देंगे, लेकिन आखरत में फिर कोई हिस्सा नहीं होगा। ये सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने बयान कर दिया है कि जिसने दुनिया की खातर नेकियाँ की, उसको दुनिया में जो अल्लाह चाह देंगे वो देंगे, उसकी मर्ज़ी का नहीं देंगे। यानी उसने नेकियाँ इसलिए की थी कि मुझे नमाज पढ़ने से रिज़्क खुल जाए, तो अल्लाह ताला हो सकता है रिज़्क ना खोलें लेकिन शोहरत अच्छी कर दें, नेक नामी हो जाए, या कोई और फ़ायदा हो जाए, सियासत में कुछ उसको बड़ा दर्जा मिल जाए, लेकिन दौलत हो सकता है ना मिले। तो अब ये नमाज़ें जो हैं उसकी आखिरत में काम नहीं आएंगी। तो दुनिया में नेकी का अजर अल्लाह ने कोई वादा नहीं कर रखा है, अगर है तो वो काफिरों के साथ है, उनकी नेकियों का अजर दुनिया मिलेगा। दोज़खियों को उनकी नेकियों का अजर दुनिया में मिलेगा। हमारे यहाँ ये बड़ा नारा कर दिया जाता है, सवाब दायरान हासिल करें, कोई सबूत नहीं है कुरान और सुन्नत में। 10 दुनिया 70 आखिर, कोई सबूत नहीं है कुरान और सुन्नत में। सिर्फ हमें आपको लालच दिया जाता है कि चलो ये नेकी कर लेंगे इस बहाने से। तो अल्लाह का वादा नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों को देना चाहे तो वो अपने फजल से, इनायत से, आजमाइश के असूल पर देता, उसे देना ही देना है। उसमें बिल गेट्स भी अमीर हो सकता है और नवाज शरीफ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं। उस्मान गनी भी अमीर हो सकते हैं और फिरौन भी हो सकता, कोई फ़र्क नहीं। दोनों को आजमाइश के लिए मिला है, कोई कामयाब हो जाएगा, कोई नाकाम हो जाएगा। तो दुनिया की कामयाबी तकवे के साथ मुतल्लिक नहीं है, ये हमेशा याद रखें। हमारे यहाँ दीन की खराबी के बड़ा वजह यही है कि हमने दीन को दुनियावी कामयाबी का ज़रिया बनाया, और जब नहीं रहा तो इस वक्त सबसे अहम सवाल जो मुझसे किया जाता है वो ये कि दीन ने दुनिया को दिया क्या है? फसाद, खून रेजी, लड़ाई झगड़े, तो ये सवाल मुझसे किया जाता है। क्योंकि हमने सबक यही पढ़ा है पिछले 150 साल से कि बल्कि हमारी जो शरीयत की तहरीक चली पाकिस्तान में नफाज शरीयत की, उसमें देखिए नारे क्या होते थे, शरीयत नाफज करेंगे तो पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसे कर तो अल्लाह करे हल हो जाए, दुआ करनी चाहिए, लेकिन शरीयत नाफज करने के बाद मुश्किलें भी आ सकती। क्या सहाबा का दौरे अव्वल मुश्किलात से खाली है? नबी करीम सल्लम का दौरे सुनहरी दौर जो है, क्या मुश्किलात से खाली है? क्या असाबे सुफा को रोटी मिल जाती थी 3 टाइम की? नहीं मिलती थी। तो मुश्किलें तकवे से हल नहीं होती हैं। अगर तकवे की बुनियाद पर मुश्किलें हल होनी हैं तो सबसे सुनहरी दौर तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें एक भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बारे में इरशाद ग्रामी है कि मैं सबसे ज़्यादा सताया गया, सबसे ज़्यादा सताया गया। तो ये वो जगह है जहाँ पर दीन को समझना चाहिए। ये दीन हौसले की चीज़ है, इसको कुव्वत के साथ अपनाना चाहिए। हमारे यहाँ तकवा ये बन गया कि नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें और बाकी बेईमानियाँ करें। तकवा ये है कि हर तरह के हालात में मैंने सच्चाई पर कायम रहना है, हर तरह के हालात में मैंने सच बोलना है, हर तरह के हालात में मैंने नेकी को नहीं छोड़ना, हर तरह के हालात में मैंने गाली नहीं देनी, चोरी नहीं करनी, फरेब नहीं देना। ये तकवा है। इस तकवे को अपनाएं और इसको भूल जाएं, क्योंकि लोग जो होते हैं वो अपने लिहाज से देख रहे होते हैं। यानी अगर आप उनके काम आ जाएं तो आपने एक आदमी है, नहीं काम आए तो आपने एक आदमी नहीं है। इसको छोड़ दें, लोगों के क्या तबसरे हैं, लोगों के क्या एहसासात हैं। हमें ये देखना है कि मेरे ख्याल में सच्चाई क्या है, उसके साथ खड़े हो जाएं, उसके बाद गर्दन कट जाए। दुनिया में फ़ायदा कोई होगा तो वो तो रसूलों को भी नहीं हुआ। तो हमारा तकवा किस काबिल है कि वो दुनिया में कुछ कामयाबियाँ दे जाएँ? तो अपनी नेकियों को बचाना चाहिए, आखिरत में काम आएंगी। तो वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लहून, इस आयत का कोई ताल्लुक दुनिया से नहीं है, आखिरत से। आगे जिस जो सवाल उठा था चांद महीनों के हवाले से, उनके पहलू से एक बिदत ज़ेर बहस आ गई थी, और अब आगे जिस पहलू से सवाल उठा था वो हज के हवाले से था, और हज करने के लिए जाना पड़ना था मक्का। मक्का जाते तो काफिरों, कुरैश मक्का की जो दुश्मनी चल रही थी अभी तक सूरह अलबकरा के नाजिल होने तक, इसका वाज़े मतलब था कि अगर हम हज के लिए जाएंगे, उम्रे के लिए जाएंगे तो लड़ाई करेंगे, रास्ता रोकेंगे। तो इसलिए अब सवाल था कि क्या करना है। तो अल्लाह ताला इजाज़त दे रहे हैं जंग करने की, इन्हीं महीनों में जिनमें जंग मना है, जिन महीनों में जंग बना थी, हराम महीनों में। हराम महीने में पहले ही बता चुका हूँ, पीछे बात गुजर चुकी है, कि एक रजब का महीना हराम महीना था जिसमें उम्रा किया जाता था आमतौर से। इस महीने में उम्रा करने वालों की वजह से कोई जंग नहीं होती थी, कोई गारतगरी नहीं होती थी, कोई कत्लो या कत्ल नहीं होता था, बिल्कुल अमन होता था इस इलाके में, पूरे अरब में जैसे कि जंग बंदी का ऐलान हो गया। इसी तरह 3 महीने हज के लिए थे, ज़िकात और ज़िलहज और मुहर्रम का, ये 1 महीना आने के लिए, 1 महीना वापस जाने के लिए, और हज के महीने में हाजियों के लिए वहाँ ठहरने के लिए। इन 3 महीनों में भी कोई फसाद नहीं हो सकता था, कोई जंग नहीं हो सकती थी, कोई किसी के ख़िलाफ़ खंजर भी नहीं निकाल सकता था, गन पॉइंट पे भी नहीं रख सकता था कि भाई सिर्फ डराने धमकाने के लिए। इतना अमन कायम कर दिया जाता था। तो ये जो सूरत हाल थी इसको कायम किया गया था ताकि हज करने वाले बैतुल्ला का अमन के साथ हज कर सकें। अब जब आदमी हज करने जाए या उमरा करने जाएगा तो वो तो कुरैश मक्का है, मारने का इम्कान है कि वो मार डालें लोगों को। तो कहा गया कि तुम्हें इजाज़त है। वकातिलु फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युकातिलूनकुम, वो लोग जो तुम्हारे साथ किताल करें इन महीनों में जिनका ऊपर जिक्र चल रहा है, तो उनके साथ तुम भी अल्लाह की खातिर लड़ सकते हो, अपनी खातिर नहीं। यानी मैं जो जंग की इजाज़त दे रहा हूँ तो अपनी खातिर नहीं, अल्लाह की खातिर लड़ सकते हो, ठीक है। हराम महीनों के अंदर, हराम महीनों का जिक्र चुके पीछे हो चुका है इसलिए उसके साथ ही चला आ रहा है। यहाँ जिक्र करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। अरबों को जो कलाम करने का तरीका है उसमें बार बार चीज़ें दोहराना मुखातब के लिए ज़िल्लत का बायस होता है कि आप बार बार क्यों बात दोहरा रहे हैं, समझ आ रही है, चलते जाएँ बात करते जाएँ। तो फरमाया कि अल्लाह की राह में लड़ो उन लोगों से जो तुम से किताल करें इन महीनों में जिनका जिक्र चल रहा है, ठीक है, हज के दिनों में कह लीजिए। तो हज के दिनों में अगर वो तुमसे, या रजब के महीने में, उमरे के दिनों में तुमसे वो अगर किताल करें तो तुम उनसे किताल कर सकते हो। तो ये हुक्म बमाना इजाज़त है। अगर इसको हुक्म बमाना हुक्म ले लें तो बड़े मसले पैदा हो जाएंगे, इसलिए बमाना इजाज़त है। हुक्म के जो सीगे हैं वो हमारी हर ज़ुबान में इस्तेमाल होता है कि वो इजाज़त के मानी में आ जाते हैं। वैसे कुरान मजीद में है कि जब हज कर लो तो फस्तादू, तो शिकार करो, यानी अब तुम शिकार कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर ये इजाज़त के मानी में है कि अगर ये लोग तुमसे जंग करें तो तुम भी इनसे जंग कर सकते हो अल्लाह की खातिर। अब अल्लाह की खातिर का क्या मतलब है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तो हो सकता है तलवार ना उठाऊं हराम महीनों में, मस्जिद हराम के पास हज करने जा रहा हूँ, अहराम बांधा हुआ है, तो क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए हमला कर दूँ? तो अल्लाह ने कहा कि इस फिक्र में ना पड़ो, फी सबीलिल्लाह में तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ कि अल्लाह की खातिर, अल्लाह की राह में तुम ऐसा कर सकते हो। वला तअतदू, लेकिन हदूद से तजावुज़ ना करना। इसके अब कई मतलब हैं यहाँ पर। एक ये कि अगर वो लड़ाई ना करें तो तुम्हें नहीं करनी, क्योंकि पीछे आ गया कि अल्लाह जी ने जो कातिल, जो तुमसे लड़ाई करें तुम उनसे कर सकते हो। तो जो तुमसे लड़ाई ना करें, अगर वो लड़ाई ना करें तुम नहीं करोगे, और अगर वो एक हाथ मारते हैं तो तुम दो हाथ नहीं मारोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें मौका मिल गया, उसने एक मुक्का मारा है और तुमने कत्ल ही कर डाला उसको। नहीं, मुक्के का जवाब मुक्का आएगा बस। तो जो वो इकदाम करें बस उतना ही तुम कर सकते हो। पहल नहीं करनी, क्योंकि हज के दिन हैं, हराम महीने हैं, इनमें लड़ाई की इजाज़त नहीं है। पहल तुमने नहीं करनी, और जितना वो इकदाम करें उतना ही करना है। रुक जाएँ तो तुम रुक जाओ, वो आगे बढ़ें तो तुम भी आगे बढ़ जाओ, वो हमला करें तुम भी जवाब में हमला कर दो, बस ये तुम्हें इजाज़त है इसकी। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मोतदीन, याद रखो कि अल्लाह ताला हदूद से तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। ये बहुत अहम बात है कि जंग के मौक़ों पर भी अल्लाह ताला इस असूल को पसंद नहीं करते कि जंग में हर चीज़ जायज़ है, ये पसंद नहीं करते। तो जंग के अंदर ये तो होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हर्ब खुदा, कि जंग में हर चीज़ खोल कर नहीं बताई जाती, कुछ बातें छुपा कर की जाती हैं। जैसे बदर के मौके पर बज़ाहिर लग रहा था कि काफ़िले की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जा बदर की तरफ रहे थे। तो मुनाफिकीन को भी उस वक्त पता चला कि आपका इरादा बदर में जाने का है, ना कि काफ़िले की तरफ, जब रास्ता जुदा करना मजबूरी थी। यानी एक रास्ता काफ़िले की तरफ जाता ही नहीं है, जब वो बदर की तरफ मुड़े तब मुनाफिकीन को अंदाज़ा हुआ कि ओहो। लेकिन तासुर ऐसे ही रखा गया कि काफ़िला आ रहा है और लश्कर भी आ रहा है। तो जो अफवाह फैली आपने उसकी वजाहत नहीं की। अफवाह दुश्मनों ने फैलाई कि काफ़िला लूटने जा रहे हैं, ये कुरैश की अफवाह थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरदीद नहीं की, कोई ऐलान नहीं किया कि नहीं नहीं हम कौन होते हैं काफ़िला लूटने वाले, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है कि काफ़िला लूटा जाए। उसको जारी रखा जहाँ तक कि वो मोड़ आ गया जिस मोड़ पे बदर पे तरफ मुड़ना था या समंदर के किनारे काफले की तरफ जाना था, तो उसको बताया नहीं गया। ये तो काम किया जा सकता है कि आपने अपने प्लानिंग नहीं बताई, आपने अपना इस तरह, लेकिन धोखा देना, हदूद से तजावज़ कर देना, जुल्म करना, ये इस्लाम की रूह से नाजायज़। तो जंग में हर चीज़ जायज़ नहीं होती, छुपाना तो जायज़ है, लेकिन धोखा देना, हदूद से तजावज़ करना, जंगी जरायम करना, ये इस्लाम में मना है। तो इतने अहम मौके पर भी देखिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें इजाज़त है जंग करने की, तुम अल्लाह के रास्ते में जंग करोगे उन लोगों से जो तुम्हारे साथ किताल करते हैं, अलबत्ता हदूद से तजावज़ नहीं करोगे, कोई भी जुल्म ज़्यादती तादी नहीं करोगे जितना वो करें, क्योंकि तुमने भी अहराम बांधा होगा, हज का महीना का एहतराम होगा, तो बस जितना इकदाम वो करें तुम भी उतना ही करोगे, और पहल हरगिज़ नहीं करोगे कि उनको देख करके दो घोड़े आ गए हैं, दो तलवारें लेकर, तो तुम पहले ही तीर चलाना शुरू कर दो, नहीं, जब वो हमला करेंगे तब, हो सकता है सिर्फ बात करने आए हो। तो याद रखो कि अल्लाह ताला मोतदीन को पसंद नहीं करता, ये पूरी उम्मत के लिए इस वक्त बहुत ही वहीद की बात है कि हम जितने हदूद से तजावज़ करने वाले हो गए हुए हैं तो सारे ही सारे अल्लाह के नापसंदीदा लोग हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मोतदीन, अल्लाह ताला हदूद से तजावज़ करने वालों को, हम जो जितनी भी कौमें हैं इस्लाम मुसलमानों की, वो सारी की सारी जिस तरह की हरकतें करती है वो हमारे सामने, यानी कौमें कौमों को धोखा देती हैं, ऊपर से हम कुछ होते हैं, नीचे से कुछ होते हैं, कहीं अमन के माहदे हो रहे होते हैं और साथ ही उधर हमले हो रहे होते हैं, ये कौमें करती हैं, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। और साहबा ने इसकी शानदार तारीख रकम की और बाद में भी काफ़ी देर तक हम इन असूलों पर कायम रहे कि हम मैदान जंग में भी, हज़रत अली का मशहूर वाक़या है कि लड़ रहे थे तो जो सामने वो गिर गया, तलवार मारने लगे थे, उसने थूक दिया, तो आपने तलवार वापस कर ली कि अब मेरा अपना बदला हो जाएगा, मैं तो अल्लाह के लड़ रहा हूँ, नहीं मारा उसको। ये जो चीज़ है ये ला युहिब्बुल मोतदीन की इतनी शानदार अमल है, इसके ऊपर इस तरह के बेशुमार वाक़यात सहाबा के हाँ में मिलते हैं, बाद में भी उम्मत के हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि फ़ौरन ही ख़राबी आ गई, बड़े अरसे तक हम इन असूलों पर चलते रहे। हम वो कौम हैं कि जिसने औरतों के रेप नहीं किए, हम वो कौम है जिसने फसलें नहीं जलाईं, हम तबाह नहीं की, हम वो कौम है कि जिसने दूसरों के जानवर नहीं कब्ज़े में किए, दूसरों के इलाके कब्ज़े में नहीं किए, ये सिर्फ इस्लाम का एजाज़ रहा है। अब अगरचे जो हमारे मगरबी लोग मौर्रखीन हैं वो इस पहलू को अपने साथ जोड़ते हैं, हालांकि सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देख लें तो यहाँ से सोने की जहाज़ भर भर कर गए हैं, धोखे हुए हैं, ख़रीदारियाँ की गई हैं लोगों की, मीर जाफर और मीर सादक ख़रीदे गए हैं, इस्लाम में ये चीज़ थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। यहाँ जासूसी होती थी, बिल्कुल हो सकती है, वो आज भी हो सकती है, उसको सारी दुनिया नाजायज़ नहीं मानती। तब ये जो कानून, जो सवाल उठा था कि हराम महीनों में क्या करना है, अगर हम हज के लिए जाते हैं या उमरे के लिए जाते हैं तो इनकी क्या हैसियत है, बता दिया कि तुम जा सकते हो और अगर तुमसे वो लड़ें तो तुम भी उनसे लड़ सकते हो, लेकिन तुमने पहल नहीं करनी, तुमने हदूद से तजावज़ नहीं करना। वक्तलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम, अब उसका पहलू दूसरा पहलू भी है, एक हराम महीनों में जंग है और दूसरा उस इलाके में जंग है जिस इलाके में जंग हराम की गई है, दो चीज़ें ना, एक यानी हराम महीनों में पाकिस्तान में जंग मना नहीं है, हराम महीनों में अरब के इलाके में जंग मना है, ठीक है। तो अब हैसु सकिफ्तुमूहुम यानी पूरे अरब का जो मीकात है, जहाँ पे मीकात बमाना ही जंग के लिए मना किया गया एरिया है, उस एरिए में जहाँ पाओ तुम इनको साथ लड़ाई कर सकते हो। फितरी सी बात है कि आपने ये तो इजाज़त दे दी कि भाई हराम महीनों में लड़ाई हो सकती है, तो कहाँ, अगर दुनिया सारी की सारी दुनिया हराम महीनों में सारी दुनिया में जंग बंदी कर दे तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल जो असल दीन था उसमें हज और उमरे के लिहाज से ऐसा किया गया था, उसको मरकज़ मानते हुए, उसको पेश नज़र रखते हुए, तो उस एतबार से अब उस सरजमीन में भी इजाज़त दे दी गई और उन दिनों में भी इजाज़त दे दी गई कि जिन दिनों में जंग मना है उनमें जंग कर सकते हो और जिन जगहों पर जंग मना है उन जगहों पर भी कर सकते हो, इस शर्त पर कि वो तुमसे जंग करने पर आ जाए। अगर वो जंग करने नहीं आए तो फिर तुम्हें इजाज़त नहीं है। तो ये जो जुमला है वक्तुलुहुम हैसु सकिफ्तुम, तो जहाँ भी तुम उनको पाओ हमला करते हुए तो उनको तुम कत्ल कर सकते हो। अब यहाँ कत्ल की इजाज़त दे दी है। एक है कि जंग करना और कत्ल नहीं करना, एक है जंग करना और कत्ल भी कर सकना, ये दोनों की इजाज़त दे दी गई। अगर खाली व कातिलु होता तो कत्ल करने की इजाज़त नहीं है, बस हीले बहाने से लड़ते लड़ते उनको बांध देना है, उनको ग़ुलाम बना लेना है, इसकी इजाज़त रह जाती, कत्ल करने की इजाज़त ना होती। इसलिए इस हुक्म को दोहराया है कि जहाँ भी पाओ इनको कत्ल कर सकते हो, उस सरजमीन में जहाँ मना है, उन दिनों में जब जंग मना है जंग कर सकते हो। वह अखरजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, और जहाँ से इन्होंने तुम्हें निकाला है वहाँ से इनको निकाल सकते हो। यानी ये इशारा है फतह मक्का की तरफ कि फतह मक्का के बाद कुरैश को यहाँ से जो काफिर थे उनको निकलना पड़ा। तो उस तक बात को ले गए अल्लाह ताला कि मैं इजाज़त दे रहा हूँ तुम्हें इस इन महीनों में जंग करने की, इस इलाके में जंग करने की, और सिर्फ जंग करने की नहीं इनकी जान लेने की भी इजाज़त दे रहा हूँ, और जिस इलाके में जिस वक्त भी ये पाए जाएं तुम इनके खिलाफ कत्ल का इकदाम कर सकते हो, इस शर्त पर कि वो जंग करने पर आ जाएं, और इनको जहाँ से इन्होंने तुम्हें निकाला है वहाँ से निकाल भी सकते हो। इसका मतलब क्या है कि किसी को अपने इलाके से निकालना जायज़ नहीं है सवाए इसके कि अल्लाह ताला इजाज़त दे दें, ये इस कानून का लाजिम मतलब है। और इसको बयान भी किया, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने यहूद पर लाजिम किया था कि अपने लोगों को घरों से नहीं निकालेंगे, तो वो ना सिर्फ ये निकालते थे बल्कि वो फ्रॉड करके फिर फिदिया देकर बचा भी लाते थे। तो किसी को उसके किसी कौम को उसके इलाके से निकालना ये गुनाह है, जुर्म है, सवाए इसके कि इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो जाए। तो अब ये जुर्म है कि मक्का में मुसलमानों को निकाला गया, ये जुर्म था, उनको जो हिजरत पे मजबूर किया गया ये जुर्म था। और अब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकालते तो जुर्म होता। तो फरमाया कि नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद तुम्हें निकाला है इसलिए तुम भी निकाल सकते हो। इन्होंने हराम महीनों की खिलाफ वर्जी करनी है तो तुम भी कर सकते हो। इन्होंने सरजमीन हरम की खिलाफ वर्जी करनी है तो तुम भी कर सकते हो। ये इजाज़त इस शर्त के साथ दी कि इन्होंने कर दिया है, इसलिए निकालने का अमल भी उनके निकालने की वजह से जायज़ हुआ, वरना निकालने का अमल जायज़ नहीं है। तो फरमाया कि तुम इनके साथ इनको कत्ल कर सकते हो जहाँ भी पाओ, वक्त के एतबार से, इलाके के एतबार से। व अखरजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, और इनको निकाल भी सकते हो जहाँ से इन्होंने तुम्हें निकाला है। यानी अब तुम भी इस काबिल हो जाओगे कि तुम इनको मजबूर कर दो कि अपना इलाका छोड़ कर चले जाएं। वल फितना तो अशद्दु मिन अल कत्ल, जो परसिक्यूशन है फितना है। फितना जो है ये अरबी ज़ुबान में फसाद के मानी में आता है, आजमाइश के मानी में आता है। तो आजमाइश हम भी इस फितने के मानी बोलते हैं। आजकल बड़ी आजमाइश आई हुई जी, कारोबार ही बंद पड़ा हुआ, बड़ी आजमाइश आई हुई जी, बच्चे सारे बीमार हुए हुए, तो ये हम इस तरह की मुश्किलात के लिए फितने का, आजमाइश का लफ्ज़ बोलते हैं। ऐसे ही अरब मुश्किलात के लिए फितने का लफ्ज़ बोल लेते थे कि मैंने मुसलमानों को सताया जा रहा था, गालम गलोच हो रही थी, अजियत दी जा रही थी, घर से निकाला जा रहा था, ये सब कुछ फितना है। ईमान की खातर जो कुछ हो रहा था उसको अल्लाह ताला ने यहाँ फितना कहा है कि मुसलमानों को सताए जाने के जितने भी रास्ते हथकंडे आगे चल के सूरतों में पता चलता है कि आग में जलाया गया है बाज़ लोगों को, बाज़ लोगों को हज़रत बिलाल का मशहूर वाक़या है, किस तरह से उनको तपती रेत पर लटाया जाता था, बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर रख दिए जाते थे, वो सारा कुछ हज़रत हारिस के साथ क्या हुआ, सुमैया के साथ क्या हुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, वो जो कुछ उनके साथ हो रहा था वो हमें मालूम है। उसकी तरफ इशारा है कि इस तरह का जो परसिक्यूशन है, मज़हब की वजह से सताया जाना है, ये कत्ल से बड़ा जुर्म है, इसलिए मैं इजाज़त दे रहा हूँ। अलफितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, कि जो इस तरह जुल्म अज़ियत हो रहा है उससे आसान है ये काम कि मुजरिम को मार दिया जाए, मुजरिम को मार दिया जाए। यह नहीं कि हर किसी को मार देना फितने के मुकाबले में, तो जो फितना बरपा कर रहे हैं उनको मार देना फितने से छोटा जुर्म है। तो इसलिए इजाज़त दे रहा हूँ कि वक्तलूहुम हैसु सकिफ्तुम, जहाँ तुम पाओ इनको मार सकते हो। वला तो कातिलूहुम इंदल मस्जिद अल हराम, और याद रखना कि मस्जिद हराम के पास इनके साथ जंग ना हो, हत्ता युकातिलूकुम फी, यहाँ तक कि ये तुमसे उस मैदान जंग में मस्जिद हराम के पास तुमसे जंग करें। तो अब जो बात ऊपर पोशीदा थी वो वाज़ेह हो गई है कि मस्जिद हराम के पास जंग करना मना है, हराम महीनों में जंग करना मना है, इन दोनों की इजाज़त दे दी गई इस शर्त पर कि वो तुमसे जंग करें, इस शर्त पर कि वो तुम्हें मारने आ जाएं, इस शर्त पर कि वो तुम्हें निकाल दें। तो तीनों कामों की इजाज़त दे दी गई, जंग करने की, किसी की जान लेने की और उसके इलाके से उसको निकालने की, इस शर्त पर कि ये तीनों काम वो कर रहे हैं और फितना बरपा है। तो अब ये इस हुक्म की वजह बता देगी, वला तो कातिलहुम इंदल मस्जिद हराम में, उस बात को खोल दिया जो पीछे चली आ रही थी लेकिन लफ्ज़ों में नहीं थी, ताकि बाज़ूकात ये होता है कि कानून को लफ्ज़ों में बयान करना ज़रूरी हो जाता है, वरना वो समझ आ रही होती है लेकिन बाज़ लोग फिर इनकार कर सकते हैं, तो उसको फिर खोल दिया लफ्ज़ों में ताकि मुसलमानों के लिए कोई तरद्दुद ना रहे, क्योंकि ये नाजुक चीज़ थी। अरबों के यहाँ जो भी आप कह लें कुरैश मक्का की जुल्म जातियों के बावजूद, अरबों के यहाँ जब कोई चीज़ इस तरह की डिसाइडेड होती थी, पहले से एक कह लीजिए कल्चर का हिस्सा हो या तहजीब का हिस्सा हो या दीन का हिस्सा हो, तो उसकी खिलाफ वर्जी खुद तो कर लेंगे लेकिन अगर दूसरा करे तो उसकी फिर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करते थे और जगह जगह पर उसको बदनाम करते, तो फिर एक बड़ा फितना बन जाता था। ये हमारे यहाँ भी होता है कि अगर हम कोई बात करें दूसरे कर लें, खुद जितना चाहे मैं करूँगा तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो ये जो कौमों का मिजाज होता है वो वहाँ पर भी मौजूद था, तो इसलिए मुसलमानों के दिल में ये था कि हम ऐसा करें कि ना करें, इंद अल्लाह क्या होगा और इंद अन्नास क्या होगा, दोनों डर थे। तो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि फ़ी सबीलिल्लाह तुम जा सकते हो, अपने खातिर नहीं, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की खातिर तुम ये इकदाम कर सकते हो कि तुम इनसे जंग कर सकते हो हराम महीनों में, इनसे जंग कर सकते हो इंद अल मस्जिद अल हराम, और इनको कत्ल भी कर सकते हो अगर ये कत्ल करने पे आ जाते हैं, अलबत्ता अगर ये ना करें तो तुम हदूद से तजावुज़ नहीं करोगे। ठीक, फ़ैन कातलूकुम फ़क्तलूहुम, अगर ये तुमसे जंग करें, आप देखिए दोनों को इकट्ठा कर दिया दोनों हुक्मों को, अगर ये तुमसे जंग करें फ़क्तलूहुम तो इनको कत्ल कर सकते हो। कत्ल करना असल मसला है, जंग तो खाली कोई चीज़ नहीं है, जंग में कत्ल हो रहे होते लोग, तो उस बात को इकट्ठा कर दिया कि अगर ये तुमसे जंग करने आए तो तुम इनको मार सकते हो। फ़क्तलूहुम कज़ाली का जज़ाउल काफ़रीन, काफ़रों की यही जजा है, उनको ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जो मौजू चल रहा था वो तकरीबन एक पहलू से मुकम्मल हो गया है। फरमाया फ़ैन इंतहु, और अगर ये बाज़ आ जाएँ तो फ़ैन अल्लाह गफ़ूर रहीम, तो अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाने वाला मेहरबान है। अब ये इतने सख्त हुक्म के बाद एक तवक्को है खुदा ताला को कि कुरैश मक्का शायद इस फितने से बाज आ जाएं, कुफर से बाज आ जाएं, उसके लिए एक बशारत का जुमला बीच में रख दिया है ताकि जिनका हौसला बन रहा है वो आगे बढ़ें और ये हौसला कर लें कि कुफर छोड़ दें और ईमान लें, कुफर छोड़ दें, फितना छोड़ दें और अमन कायम कर दें। तो दोनों की तरफ दावत दे दी कि अगर ये कुरैश मक्का बाज आ जाते हैं, ईमान ले आते हैं, फितना छोड़ देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, पिछले जो गुनाह हैं, पिछली जो इन्होंने हरकतें की हैं उसको माफ़ कर देंगे। तो यहाँ रोक लेते हैं, आगे मज़मून यही चल रहा है लेकिन एक पहलू से मुकम्मल हो गया है, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा बाकी जो रह गया है। अब मैं सवालात के लिए हाज़िर हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।